श्रीमद् भागवतम सातवां स्कंद नवा अध्याय अध्याय का नाम है प्रहलाद द्वारा नरसिंह देव को प्रार्थनाओं से शांत करना श्लोक संख्या 30। एकस्त्वमेवा जगदेतम मुष्ययत्वम् आद्यन्तयो प्राथगवस्यसि मध्यतश्च गुणाव्यातिकरं निजमाययेदम् नानेव तेरासितस्तानुप्रवेष्टा। हे भगवान, अकेले आप ही अपने आप, केवल आप ही अपने आप को विराट जगत के रूप में प्रकट करते हैं, क्योंकि आप सृष्टि के पूर्व विद्यमान थे, संहार के बाद ही विद्यमान रहते हैं और आदि तथा अंत के बीच में भी पालक हैं। यह सब प्रकृति के तीन गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से आपकी बहिरंगा शक्ति द्वारा किया जाता है। अतः भीतर तथा बाहर जो कुछ भी विद्यमान है वे केवल आप हैं। तात्पर्य, जैसा कि ब्रह्म संहिता 5:35 में कहा गया है, एको अभ्यस्यो यश्रुतिम जगदंड कोटि यच्छक्ति रस्ति जगदंडचया यदंता अंडा तरस्तम परमाणुचया तरस्तम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं उन गोविंद भगवान की पूजा करता हूँ जो अपने किसी एक अंश के द्वारा प्रत्येक ब्रह्मांड तथा प्रत्येक परमाणु तक में प्रवेश करते हैं और इस प्रकार अपनी अनंत शक्ति को सारी भौतिक दृष्टि में प्रकट करते हैं। इस विराट जगत की सृष्टि करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद अपनी बहिरंगा शक्ति का विस्तार करते हैं और इस प्रकार वे ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के भीतर यहाँ तक कि परमाणु में भी प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार वे पूरी भौतिक सृष्टि में विद्यमान रहते हैं। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अपने भक्तों के पालन में जो कार्यकलाप संपन्न किए जाते हैं वे भौतिक ना होकर दिव्य होते हैं। वे प्रत्येक वस्तु में कार्य कारण के रूप में विद्यमान रहते हैं, फिर भी वे पृथक होकर इस जगत के परे रहते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता 9:4 में भी हुई है, मया ततम इदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि नाचाहं तेषो अवस्थिता। संपूर्ण विराट जगत भगवान की शक्ति का विस्तार मात्र है, प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर टिकी है, फिर भी वे सृजन पालन तथा संगार से परे पृथक रहते हैं। भांति भांति की सृष्टि उनकी बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न है। चूंकि शक्ति तथा शक्तिमान एक है, अतः सारी वस्तुएं एक है। सर्वम खलम इदम ब्रह्म, अतः परम ब्रह्म या कृष्ण के बिना कुछ भी विद्यमान नहीं रह सकता। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत का अंतर यही है कि उनकी बहिरंगा शक्ति भौतिक जगत में किंतु उनकी अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक जगत में प्रकट होती है। फिर भी दोनों शक्तियों का संबंध परमेश्वर से होता है, अतः उच्च स्तर पर भौतिक शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती क्योंकि प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक शक्ति होती है। जिस शक्ति में भगवान की सर्वव्यापकता की अनुभूति नहीं हो पाती वह भौतिक कहलाती है, अन्यथा प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक है। इसलिए प्रहलाद प्रार्थना करते हैं, एकस्त्वमेव जगदेतम, आप सब कुछ है। ओम अज्ञानस्य निरंतस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः वाञ्छाकल्पद्रुभ्यश्च कृपासिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस भागवत कक्षा में। कार्तिक मास में नरसिंह भागवत श्रवण का बहुत महत्व बताया गया है। इसलिए गोपाल कृष्ण महाराज भी वृंदावन यात्रा में बता रहे थे, कार्तिक मास में एक श्लोक सुनने का क्या परिणाम है, 18 पुराणों को सुनना। तो कितना इससे बढ़िया डील और क्या होगी। तो आप सब भक्तों का स्वागत है। बहुत रोचक प्रसंग चल रहा है। प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान को अपनी प्रार्थनाओं द्वारा शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज बहुत क्रोध में है और बाकी सबने प्रार्थनाएं कर ली लेकिन वे शांत नहीं हुए। फिर प्रहलाद महाराज सामने आके प्रार्थनाएं कर रहे हैं और प्रहलाद महाराज की हम बातें देखते हैं पिछले कई श्लोकों से चल रहे हैं और एक एक श्लोक आश्चर्यचकित करने वाला है। अद्भुत एस्टॉनिशिंग प्रेयर्स, क्योंकि इस श्लोक में देखते हैं कि बहुत डीप फिलॉसफी है। आपने तात्पर्य सुना होगा, है ना। जब ये बातें सुनते हैं भागवत में तीन गुण प्रकृति परे भगवान, तो आंखें बंद हो जाती हैं, समझ नहीं आता। और ये प्रहलाद महाराज 5 साल का छोटा बालक प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना ऐसे नहीं कि हमारी तरफ पढ़ के बोल रहा है कुछ श्लोक, है ना, मैकेनिकली प्रार्थना कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं हृदय से, फीलिंग्स के साथ, रियलाइजेशन के साथ, कन्विक्शन के साथ, कि क्या प्रार्थना कर रहे हैं। त्वमेव एकस्त्वमेव जगतम अमुष्यत्वम, आप ही हैं ये जगत। डीप कन्विक्शन और रियलाइजेशन साक्षात्कार के साथ, फीलिंग के साथ कि हे भगवान अकेले आप ही अपने आप को इस विराट जगत के रूप में प्रकट करते हैं। एकस्त्वमेव जगदेतम अमुष्यत्वम, क्यों? क्योंकि आद्यन्त्यो मध्यतश्च, आदि में भी आप थे, इस जगत की सृष्टि से पहले भी आप थे, अंत में भी आप थे, मध्यस्थ बीच में भी आप थे। आप आदि में भी हैं, अंत के बाद भी हैं, आदि से पहले हैं, अंत के बाद हैं, बीच में भी हैं, और साथ में क्या है, पृथक वस्यसि, इन सबसे अलग भी हैं। सृष्टि की रचना भी की आपने, क्योंकि आप ही हैं जो इस सृष्टि के रूप में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। आप सृष्टि से पहले भी थे, सृष्टि के संहार के बाद भी हैं, और बीच में भी हैं, और अपने आप को बिल्कुल अलग रखते हैं। और ये सब कैसे करते हैं आप, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम लग रहा है, कैसे कर रहे हैं? बहुत ही आसानी से, सृष्ट्वा गुण व्यतिकरण निजमायेदम, आपकी अपनी शक्ति है बहिरंगा शक्ति, उसमें प्रकृति के तीन गुणों में आपस में व्यतिकरण, गुण व्यतिकरण आपस में इंटरेक्शन है, तीन गुणों में विकार आते हैं होते हैं, उससे सृष्टि स्थिति पल्लय तीनों चीजें हो जाती हैं और आप अलग रहते हैं, आपकी शक्ति से तीनों काम हो जाते हैं। नानेव तेरव सितस्त अनुप्रविष्टा, और अनेक किस्में इस संसार में जितनी वैरायटीज दिखाई दे रही, जितनी विविधता दिखाई दे रही है, उन सब के अंदर अनुप्रविष्टा आप प्रवेश कर गए हैं। एक एक कण कण के अंदर आप प्रवेश कर गए हैं। तो पूरे जगत में आप सर्वव्यापक हैं। ये सृष्टि केवल आपकी, आप ही हैं सृष्टि। तो इतनी सुंदर, इतना डीप फिलॉसफी वाली ये प्रार्थना है और उनके हृदय से ये फीलिंग्स के साथ निकल रही है। 5 साल के बालक अदंता बड़े उद्दंड होते हैं, शरारती होते हैं, चंचल होते हैं। हम लोग तो कई बार इतनी बड़ी उम्र में तब भी चंचल है, भगवान के प्रति हमारा इतना ध्यान में नहीं होगा। और 5 साल का बालक ऐसी प्रार्थनाएं कर रहा है जिसको समझने में हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा, पता नहीं समझ आएगी भी नहीं आएगी, इतनी डीप फिलॉसफी की प्रार्थना। इसका साफ मालूम चलता है कि प्रहलाद महाराज के ऊपर भगवान नरसिंह की असीम कृपा है। बिना भगवान की कृपा के कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से जेन्युइनली फीलिंग्स के साथ भक्ति नहीं कर सकता। दिखावली भक्ति अलग बात है, हृदय के साथ, फीलिंग्स के साथ, जेन्युइन ऑनेस्ट ईमानदारी वाली जो भक्ति है उसके लिए हमें भगवान की अहितु की कृपा चाहिए। प्रहलाद महाराज का प्रसंग हमें बता रहा है, इतनी सुंदर प्रार्थना है। तो आज इस प्रार्थना को हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, कुछ फिलॉसफी और कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हम देखते हैं भागवतम में जब भी भक्तों को भगवान का दर्शन हुआ है, प्रत्येक भक्त ने यही प्रार्थना की है, इससे मिलती जुलती ही, कि आप इस सृष्टि के करता है, आप ही संहार करते हैं, लेकिन आप इससे परे हैं, है ना। प्रत्येक भक्त ने ये प्रार्थना की है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये भगवान का एकमात्र गुण है कि भगवान ही सृष्टि कर सकते हैं और कोई सृष्टि नहीं कर सकता। और साथ में जब भक्त के सामने भगवान उपस्थित होते हैं इस भौतिक जगत में, तो भक्त अपने आप को आश्वासन दिलाता है कि भगवान आपके सामने उपस्थित तो है लेकिन इस जगत के नहीं है। ये मत समझना भगवान आपके सामने है तो आप ही की तरह हो गए, नहीं, इस आपके सामने आ गए हैं लेकिन ये अपने अंतरंगा शक्ति के माध्यम से आए हैं, आपकी तरह बहिरंगा शक्ति के माध्यम से नहीं आए। तो ये हमारी तरह नहीं है, हालांकि हमारे सामने इस भौतिक जगत में प्रकट हो गए। जिनसे शिला प्रभाव धारण देते हैं कि प्रधानमंत्री अगर जेल में जाए तो उसको कैदी नहीं माना जाएगा, है ना। था ना एक चुटकुला था, एक बारी बहुत समय पहले, जवाहरलाल नेहरू जी जेल में जाते हैं 15 अगस्त के दिन घूमने, कैदियों पे कृपा करने के लिए सब देखते हैं, सॉरी पागलखाने में जाते हैं, सॉरी पागलखानों देखते हैं क्या है। तो पागलखाने में जाते हैं तो सब पागल उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है कोई क्या कर रहा है। एक पागल बड़ा गंभीर मुद्रा में एकदम सोफिस्टिकेटेड बैठा हुआ, शांत और बड़ा गंभीर। और नेहरू जी भी बड़े एरिस्टोक्रेटिक व्यक्ति थे, बड़े इंप्रेस हो गए। उसके पास जाते हैं और नमस्कार, नमस्ते, आप कौन है, आपका परिचय? उसने बोला आपका परिचय? तो जवाहरलाल मुस्कुराए, मैं जवाहरलाल नेहरू, भारत का प्रधानमंत्री। तो पागल जोर जोर से हंसने लगा, पेट पकड़ के लौटने लगा, अरे वो जोर जोर से। नेहरू बेचारे बड़े परेशान हुए, क्यों हंस रहा? कहते हैं 5 साल पहले मैं भी यही कहता था। तो उसने सुना ये भी मेरी तरह पागल है। इसी ढंग से जब भगवान इस सृष्टि में आते हैं तो मूर्ख लोग उनको साधारण मनुष्य मानते हैं। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषं तन्माशिता, है ना, परम भाव जानता कि भगवान है, परम ब्रह्म है। लेकिन बोलते हैं नहीं, क्योंकि हमारे सामने प्रकट हुए हमारे जैसे ही है, तो इसलिए ये एक साधारण मनुष्य है। इसलिए भागवत में प्रत्येक भक्त ने यह प्रार्थना की है कि आप सृष्टि से परे हैं, 3 गुणों से परे हैं। और ये जो प्रार्थना प्रहलाद महाराज ने की, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसको हम बोलते हैं संबंध ज्ञान। भगवान का इस सृष्टि से क्या संबंध है, जीव का इस सृष्टि के क्या साथ संबंध है, भगवान का जीव के साथ क्या संबंध है। ये संबंध ज्ञान समझना हम सब साधकों के लिए अति आवश्यक है। जब तक हमारा संबंध ज्ञान स्पष्ट नहीं होगा, हमारी भक्ति अभिधेय ठीक ढंग से प्रोसेस हम सही ढंग से फॉलो नहीं करेंगे, और जब प्रोसेस सही ढंग से फॉलो नहीं करेंगे तो प्रयोजन फल कैसे मिलेगा। इसी संबंध ज्ञान की अपूर्णता के कारण सही ढंग से क्योंकि हम संबंध ज्ञान नहीं समझ पाते, इसलिए हमारे व्यक्तिगत जीवन के संबंधों में भी बहुत सी समस्याएं आती हैं। है यहां पे कोई है ऐसा भक्त जिसको दूसरे भक्तों के साथ या घर में संबंधों में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो दिक्कत भी हमारे संबंधों में, जो दिक्कत है माता पिता के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, दो भक्तों के बीच में, दो मित्रों के बीच में, मुख्यतः हम देखेंगे कारण क्या है कि इस संबंध ज्ञान की अपूर्ण नॉलेज, अपूर्ण ज्ञान। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। आंखें खोल करके, कान भी खोल करके साथ साथ और ध्यान पूर्वक हम इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे, और फिर बाद में इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखने का प्रयास करेंगे। तो इस पूरे श्लोक का जो सार है, इस संबंध ज्ञान का जो सार है, श्री भगवान ने बहुत ही सशक्त इसका तात्पर्य दिया है और अंतिम वाक्य में पूरा सार दे दिया है। अंतिम वाक्य है, इसलिए प्रहलाद प्रार्थना करते हैं एकस्त्वमेव जगत एतम, आप सब कुछ, बस कृष्णा इज एवरीथिंग, वासुदेवम सर्वम इति। ये सार है इस पूरे श्लोक का कि आप सब कुछ है। इसका क्या मतलब है, आप सब कुछ है, कृष्ण ही सब कुछ है? इसका मतलब है कि कृष्ण ही सब कारणों के कारण है। इसका मतलब है कृष्ण के बिना एक अणु का भी अस्तित्व नहीं है। नथिंग कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्ण। कृष्ण के बिना किसी भी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है। एक बार जब नेवाई पंडित ईश्वरपुरी से दीक्षा लेकर आए तो अपना विद्यालय चलाते थे वो, और व्याकरण पढ़ाते थे। नेवाई पंडित बहुत बड़े पंडित थे। तो लेकिन अब वो जब ईश्वरपुरी से दीक्षा लेकर आए तो अब उनको हर स्थान पर कृष्ण के ही दर्शन हो रहे थे। तो संस्कृत पढ़ाते हैं, संस्कृत में धातु होते हैं ना, धातु शब्द आता है। और धातु शब्द के कई अर्थ होते हैं। धातु शब्द का एक होता है लिविंग फोर्स, जीवन, जीवित रखने वाली शक्ति, जीवन शक्ति। तो जैसे ही उन्होंने बड़ा धातु का अर्थ है जीवन शक्ति, और जीवन शक्ति है कृष्ण, इसके बिना सब कुछ निर्जीवन है, निर्जीव है। उनके जो विद्यार्थी में क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, अभी तक तो ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन किया है दिया ही नहीं किसी ने। तो कृष्ण के बिना कुछ नहीं है, कृष्ण इज एवरीथिंग, कुछ भी कृष्ण के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कृष्ण सब में है और सबके अंदर कृष्ण है। मया रतम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति नमस्तानि सर्वभूतानि नाचम तेषु अवस्थिता। मैं सबके अंदर व्यापक हूं, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत रूप में सबके अंदर नहीं हूं। जैसे ब्रह्मांड घाट में हम गए थे, आप में से कई भक्त लोग गए होंगे ब्रह्मांड घाट। जब भगवान को यशोदा माता को बताया गया कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है, तो माता ने बोला दिखाओ, भगवान ने दिखाया और भगवान यशोदा माता को क्या नजर आया, पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हुए और ब्रह्मांड के साथ साथ यशोदा माता ने अपने आप को भी देखा, कृष्ण को भी देखा, वृंदावन को भी देखा। तो कृष्ण सब में है, कृष्ण वृंदावन में है और वृंदावन कृष्ण में है। आप इस समय दिल्ली में हैं, आप दिल्ली में हैं, क्या हम कह सकते हैं हमारे अंदर दिल्ली है? मुंह खोल के दिखाओ, मुंह खोल के दिखाएंगे तो डॉक्टर बोले दिल्ली तो नहीं है, दिल्ली का पॉल्यूशन जरूर है। तो ये है भगवान सृष्टि, भगवान के अंदर ही है और भगवान सृष्टि के एक एक कण में है। कृष्णस एवरीथिंग, वासुदेवम सर्वम इति। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात समझने की है, भगवान सब कुछ है लेकिन सब कुछ भगवान नहीं है। बड़ी अजीब सी बात है, A is equal to B but B is not equal to A। ये कैसा मैथमेटिक्स है, ये आध्यात्मिक गणित है। भगवान सब कुछ है, कृष्णा इज एवरीथिंग बट एवरीथिंग इज नॉट कृष्णा। बात समझने वाली है, क्यों? शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, शक्ति शक्तिमान के समान ही है लेकिन साथ में एकदम समान नहीं है। शक्ति और शक्तिमान में अंतर भी है और एकत्व भी है, यह है अचिंत्य भेदाभेद तत्व। इसलिए जो मायावादी लोग हैं वो कहते हैं सब कुछ भगवान है, वासुदेव सर्वमिति को ऐसे भी कहते हैं सर्वमिति वासुदेव, सब कुछ भगवान है, सर्वं खलमिदं ब्रह्म, दरिद्र नारायण, अमीर नारायण, ये नारायण वो नारायण है ना। एक बहुत फेमस मायावादी संत थे जिन्होंने बोला कि कुत्ते की पूजा भगवान की पूजा के समान है, डॉग और गॉड है ना। वो कुत्ते को रोटी खिलाने के लिए भागे थे, बोले मैंने भगवान को रोटी खिला दी, बेवकूफी मूर्खता। तो ये मायावादी है, सर्वमिति कृष्ण वासुदेव, वासुदेव सर्वमिति, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। ये बात बहुत बहुत जन्मों के बाद समझ में आती है कि कृष्णा इज एवरीथिंग, इतनी आसानी से समझ में नहीं आती। हम सब सोचते हैं इतनी क्या कॉम्प्लिकेटेड बात बोली आपने, समझ में आ गया सब कुछ है भगवान सर्व कारण कारणम। नहीं, ये अभी चर्चा करेंगे क्यों सब कैसे समझ आती है हमें, ये बहुत जन्मों के बाद ये समझ में आती है बात कि भगवान ही सब कुछ है। तो हमने देखा कि कृष्ण सब कारणों के कारण है और यही बात भगवान ने ब्रह्मा जी को बताई चतुश्लोकी भागवतम में। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जब गर्भोदक्षाय जी के विष्णु के नाभि से उत्पन्न हुई, कमल से हुई, श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कमल से हुई तो ब्रह्मा जी बड़े विस्मित अवस्था में थे कि मुझे करना क्या है। तब उनको दो शब्द सुनाई दिए, तप तप किया उन्होंने और उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। बताया गया भागवतम दूसरे स्कंद में भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला आपकी जो ये तपस्या थी बिना दोगलेपन के थी, नॉन डुप्लीशियस तपस्या, ये जो बिना दिखावट के और बिना दोगलेपन के आपकी जो तपस्या है इससे हमें ज्ञान और योग्यता प्राप्त होती है। हमारी तपस्या में कोई दिखावा कोई दोगलापन नहीं होना चाहिए, तो निश्चित रूप से उस तपस्या में बहुत शक्ति है, उसमें हमें ज्ञान और योग्यता प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ और योग्यता प्राप्त हुई, ब्रह्मा जी समझ नहीं पा रहे थे। आप कल्पना कीजिए गर्भोदक सागर में तूफान आया हुआ था और आराम से लेटे हुए गर्भोदक्षाई विष्णु, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा और उस तूफान के अंदर कमल की जो नाल ऐसे है हिल रही है जोर जोर से और ब्रह्मा जी अकेले अंधकार, क्या करें। तब उन्होंने तपस्या की और फिर भगवान ने उनको अपने धाम के दर्शन दिए, अपने पार्षदों के दर्शन दिए और साथ में भगवान ने ब्रह्मा जी से प्रसन्न होकर हैंडशेक किया, हाथ मिलाया। ये पहला हैंडशेक सृष्टि का, हाथ मिला के बोला वेल डन ब्रह्मा, वेल डन, यू आर सक्सेसफुल, आप सफल हुए, ऑल द बेस्ट, जाओ सृष्टि की रचना करो। और सृष्टि की रचना से पहले आपको हम ज्ञान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान, और भगवान ने यह ज्ञान केवल चार श्लोकों में दिया और एक लकी चतुश्लोकी भागवतम। बाद में ब्रह्मा जी ने ज्ञान नारद जी को दिया, थोड़ा सा विस्तार किया, फिर नारद जी ने ज्ञान व्यास जी को दिया और विस्तार किया, व्यास जी ने शुकदेव गोस्वामी जी को दिया, फिर अभी जो भागवत है हमारे पास उसमें लगभग 18,000 श्लोक हैं, लेकिन शुरुआत भगवान ने की चतुश्लोकी भागवतम के साथ। तो ये चतुश्लोकी भागवतम में दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 33 से लेकर 36 श्लोक है। तो 33वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं अहम एवा समव आग्रे ना अन्य यद सत असत परम पश्चात अहम यदे तच्च यो अविश्येत सोस्य हम। हे ब्रह्मा, वह मैं ही हूं जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था, जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था, करे ब्रह्मा मैं ही था केवल। तब इस सृष्टि के कारण स्वरूपा भौतिक प्रकृति भी नहीं थी, जिसे तुम अब देख रहे हो वह भी मैं ही हूं, और प्रलय के बाद जो शेष रहेगा वह भी मैं ही हूं। ठीक है, भगवान स्वयं इसकी पुष्टि कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी ने श्लोक का लगभग 4 या 5 पेज का तात्पर्य दिया है, और अलग अलग आचार्यों को कोट करते हुए प्रभुपाद ने यह स्थापित किया है, जब ये भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि से पहले मैं हूं, सृष्टि के बाद मैं हूं, बीच में भी मैं हूं, तो इससे स्पष्ट मालूम चलता है कि भगवान कह रहे मैं हूं, इसका मतलब भगवान एक व्यक्ति है, पर्सनल फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ, कोई निराकार ब्रह्म नहीं है, भगवान एक व्यक्ति है। भगवान के व्यक्तिगत रूप का साक्षात्कार ये आत्म साक्षात्कार की परम काष्ठा है। और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं, अगर किसी को ये साक्षात्कार हो गया कि भगवान का एक व्यक्तिगत रूप है, फिर वो योग्य है कि वो संन्यास ले सकता है। क्योंकि अगर हमें साक्षात्कार है, डीप रियलाइजेशन है कि कृष्ण एक व्यक्ति है और कृष्ण सर्व विद्यमान है, कण कण में है और एक व्यक्ति है और मेरे हितेशी हैं, परम मित्र हैं, फिर किस बात का डर, फिर हम संन्यास ले सकते हैं आराम से, यानी घर गृहस्थ में रहते हुए संन्यास कर सकते हैं और विचरण भी कर सकते हैं संन्यास लेकर। क्यों? कृष्ण एक व्यक्ति है, ये साक्षात्कार होना अति आवश्यक है। श्रीला प्रभुपाद जी हमको समझाने के लिए भौतिक उदाहरण देते हैं, कैसे समझे कि सृष्टि से पहले एक व्यक्ति है, बीच में एक व्यक्ति है, प्रलय के बाद एक व्यक्ति है, कैसे समझे? तो प्रभुपाद ने हमें समझाया, 2 उदाहरण दिए। किसी को याद है कौन से 2 उदाहरण है? मकड़ी का है ना, मकड़ी है, मकड़ी अपने जीव से थूक निकालती है, पूरे जाल बना देती है, और जब इच्छा करती है जाल वापस ले लेती है बस, और मकड़ी बिल्कुल अलग रहती है, जाल में खुद नहीं फंसती। इसी ढंग से भगवान, मकड़ी जाल से पहले थी, जाल के बाद है, जाल के बीच में भी है, लेकिन बिल्कुल अलग है। और इस जाल में अगर कोई मक्खी आके फंस जाती है, और मक्खी फंस के या कोई कीड़ा जब फंसता है, वो जितना ज्यादा प्रयास करता है इस जाल से निकलने का, क्या होता है, उतना ज्यादा वो इसमें फंस जाता है। इसी ढंग से हम बद जीव अपनी इच्छा से इस मकड़ी के जाल में फंस गए, इस बहिरंग शक्ति के जाल में फंस गए, और जितना ज्यादा हम संघर्ष करते हैं, ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन प्रकृति स्थानी कर्षण मन स्थानी मन शानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, अपने मन और इंद्रियों के साथ हम यहां संघर्ष करते हैं और इसमें और ज्यादा फंसते चले जाते हैं। दूसरा उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने कुम्हार का और मिट्टी का। मिट्टी से कुम्हार मटका बनाता है, और जब वो मटका टूट जाता है तो दोबारा से मिट्टी में मिल जाता है, वो फिर दोबारा से मटका बनाता है। एक कवि ने कविता लिखी, ये किस प्रकार का पागल कुम्हार है, पहले मिट्टी से मटका बनाता है, फिर तोड़ देता है, फिर दोबारा से मटका बनाता है। इसी ढंग से भगवान बोले, क्या है, आप पहले सृष्टि की रचना करते हो, फिर संहार कर देते हो, खुद ही संहार करते हो, भत्वा भत्वा प्रलीयते, ये किस प्रकार का आपका व्यक्तित्व है। इसलिए भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, भगवान की योजनाओं को, भगवान की मानसिकता को कोई नहीं समझ सकता, क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो ये 2 उदाहरण से हम समझ सकते हैं। और जब कृष्ण सृष्टि की रचना करते हैं अपने बहिरंगा शक्ति के माध्यम से, तो ऐसा नहीं है कि कोई लोहार हथौड़ा और छैनी लेकर बना रहा है पसीना, कोई आप सोचो किसी चीज की क्रिएशन करनी हो, इन्वेंशन करना हो, कितना संघर्ष करना पड़ता है, और उसको पालन करने में कितना संघर्ष करना पड़ता है, AMC साइन करने पड़ते हैं तभी वो मेंटेन नहीं होती, और संहार करना तो वो भी मुश्किल है, और अपने आप ही बड़ी संहार होता है उसको हम रोक भी नहीं पाते। लेकिन भगवान बहुत ही स्पॉन्टे फ्रीली आराम से करते हैं, है ना, अंगाने यस्य सकलंदे वृद्धि मंति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति। पश्यन्ति भगवान देखते हैं, मेंटेन करते हैं अनंत कोटि भगवान को, चिरम जगन्ति, लेकिन सब करते हुए क्या है, आनंद चिन्ह सुजवल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमामजामि, ये सब करते हुए भगवान आनंद चिन्ह में सुउज्ज्वल विग्रहस्य आनंद में है, चिन्मय में है और उज्जवल उनका विग्रह है, ऐसे गोविंद को मैं नमस्कार करता हूं। तो ये ब्रह्मा जी का रियलाइजेशन है। तो ये संबंध यार हमें समझना है कि भगवान किस प्रकार से एक एक कण कण में विराजमान है, सर्वव्यापक है। कोई कह सकता है हवा भी सर्वव्यापक है, सूर्य की रोशनी भी सर्वव्यापक है और भगवान भी सर्वव्यापक है, तो क्या अंतर है? भगवान जो सर्वव्यापक है, आचार्यगण समझाते हैं, भगवान सर्वव्यापक के साथ साथ परम नियंता है, एक एक जीव के भाग्य के परम नियंता है। कण कण में भगवान है और एक एक जीव को वो नियंत्रित कर रहे हैं। करुणा देव नेत्र ने जंतु देव पाए दे, किस पिता के वीर्य से किस मां के गर्भ में कौन सा जीव जाएगा, ये सब भगवान नियंत्रित कर रहे हैं। सुप्रीम कंट्रोलर, भगवान के नियंत्रण से एक एटम भी बाहर नहीं है, एक अणु भी भगवान के नियंत्रण से बाहर नहीं है। तो जब ये बात हम समझ जाते हैं, और अगर ये बात हम नहीं समझे तो क्या इसका परिणाम होता है, हम देखते हैं। अगर इस भौतिक सृष्टि और भगवान के संबंध को अगर हम संग नहीं समझते तो दो प्रकार के नास्तिकवाद प्रकट होते हैं, एक है कर्मियों का और दूसरा है ज्ञानियों का। कर्मी लोग बोलते हैं कि भगवान का इस सृष्टि से कुछ लेना देना नहीं है, इस सृष्टि की रचना मेरे लिए हुई है, मेरे भोग के लिए हुई है ना। एक बार प्रभुपाद जी ने सब शिष्यों को बोला, कृष्णा हैज क्रिएटेड दिस मटेरियल वर्ल्ड फॉर एंजॉयमेंट। सब खुश हो गए, वाह। प्रभुपाद ने बोला, नॉट फॉर योर एंजॉयमेंट, फॉर हिज ओन एंजॉयमेंट, है ना। तो जो कर्मी है, ग्रॉस मटेरियलिस्ट है, वो सोचता है कि ये मेरे भोग के लिए है, यानी कि सृष्टि का भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, एक तरह का नास्तिकवाद है। दूसरे तरह के नास समझ से जो दूसरा नास्तिकवाद प्रकट होता है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इस सृष्टि हालांकि परम सत्य से आई है लेकिन ये मिथ्या है, ये केवल मन का भ्रम है, कुछ नहीं है, ये सब ऐसे ही है, है ना। तो ये भी वास्तव में, ये जो दोनों तरीके हैं, बिल्कुल सृष्टि को अपने से भगवान से अलग मानना और ये सृष्टि पूरी झूठ है ये मानना, ये वास्तव में ये दोनों नास्तिकवाद का पालन करके हम अपने आप को भगवान का दास मानने से इनकार करते हैं। हम भक्त को भगवान का दास नहीं मानना चाहते। और जब कोई प्राकृत भक्त, नवदीक्षित भक्त भक्ति में जुड़ता है, प्राकृत भक्त का क्या लक्षण है कनिष्ठ अधिकारी का, कि वो समझ नहीं पाता, वो इस बात को अप्रिशिएट नहीं कर पाता कि भगवान मंदिर से बाहर भी है। मंदिर में आएगा केवल दर्शक को देखेगा, बहुत झुक झुक के प्रणाम करेगा, यूं करता रहेगा, घूमेगा फिरेगा, प्रणाम करेगा, चाटेगा, चूमेगा, सब करेगा और बाहर जाके भूल जाएगा कि भगवान है। जैसे कि पाश्चात्य देशों में हम देखते हैं, क्रिश्चियंस लोग आते हैं चर्च में आके सब बोलते हैं मैंने ये पाप किया, और बाहर जाके बोलते भगवान तो है नहीं, फिर पाप करते हैं। ये कनिष्ठ अधिकारी की मानसिकता है। और ये कनिष्ठ अधिकारी की मानसिकता कहां से आई, ये दो नास्तिकवाद से, कि कर्म और ज्ञान का मिश्रण। कर्म का मिश्रण क्या है, कि ये सृष्टि मेरे भोग के लिए है, और ज्ञान का मिश्रण क्या है, ये सृष्टि बेकार की है, ये सत्य नहीं है। हम सब नवदीक्षित भक्तों के अंदर ये कर्म और ज्ञान का मिश्रण है, और इस कर्म और ज्ञान के मिश्रण का जब तक रहेगा हम उत्तम भक्ति नहीं कर सकते। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, रूप गोस्वामी जी भक्ति सिंधु में उत्तम भक्ति की जो परिभाषा है, ज्ञान और कर्म के मिश्रण से रहित होनी चाहिए। और ज्ञान और कर्म का मिश्रण कहां से आता है, इस संबंध ज्ञान के अपूर्ण ज्ञान से, ताकि हम सृष्टि को समझ नहीं रहे कि सृष्टि पूर्ण रूप से भगवान की सेवा के लिए है ना। कई बार हम सोचते हैं मेरे भोग के लिए है, कई बार हम सोचते हैं बिल्कुल ये मिथ्या है। क्लियर है? तो अभी तक हमने ये चर्चा की कि भगवान के संग से परम नियंता है, और कैसे जब इसका ज्ञान नहीं होगा तो हमारे अंदर क्या त्रुटियां आएंगी, और जब तक ये ज्ञान और कर्म का मिश्रण रहता है, हम अगर एक प्रमाणिक गुरु से दीक्षा भी ले लें, जब तक एक भक्त के अंदर ज्ञान और कर्म का मिश्रण होगा, अगर प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेने के बाद भी प्रमाणिक गुरु क्या करते हैं, आध्यात्मिक जगत से जो हरे कृष्ण महामंत्र है, संदेश है, उसको लेकर हमारे हृदय में प्रकाशित कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे हृदय में ज्ञान और कर्म का मिश्रण है तो वो संदेश हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं होगा। इसलिए हर एक भक्त को प्रयास करना चाहिए ज्ञान कर्मादि अनावृतम, इस आवरण को हटाए। कैसे हटाए वो भी चर्चा करेंगे आगे। तो इस सिद्धांत के विषय में हम बहुत कुछ कह सकते हैं, पूरा भागवतम के प्रत्येक स्कंद में ऐसी प्रार्थना है और इस पे बहुत बड़े बड़े तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिए हैं। लेकिन समय कम है, हम तो इसका प्रैक्टिकल साइड में आएंगे कि इस ज्ञान का हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। उससे पहले प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में एक बहुत महत्वपूर्ण बात और बताई सिद्धांत के रूप में, भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति के अंदर अंतर बताया। श्री प्रभुपाद ने बताया जिस शक्ति में भगवान की सर्वव्यापकता की अनुभूति नहीं हो पाती वह भौतिक कहलाती है। इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक जगत में हम भगवान की सर्वव्यापकता को भूल जाते हैं, इसलिए यह मटेरियल एनर्जी है। इंटरनल भगवान की अंतरंगा शक्ति में वृंदावन वासी के जो लोग हैं, वृंदावन में रहने लोग हैं, वो नहीं भूलते कि कृष्ण ही सब कुछ है। उनके जीवन में केवल कृष्ण है और कुछ नहीं। वासुदेवम सर्वमिति, कृष्णम सर्वमिति, दैट्स ऑल। हमारे पास कृष्ण को छोड़कर कई ऑप्शंस हैं। हमारे जीवन में हमारे लिए भक्ति जीवन का एक हिस्सा है। 24 घंटे में से कुछ घंटे भक्ति कर लेते हैं, उसको करके हम आपको बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन वासुदेव सर्वमिति नहीं है। बहुत सी चीजें हैं, साथ में कृष्ण है। तो ये बहिरंगा शक्ति में हम भगवान की सर्वव्यापकता को भूल जाते हैं, और जब भगवान की सर्वव्यापकता को भूल जाते हैं तब हम भोगने का प्रयास करते हैं। अगर मुझे पड़ोसी के घर में जाके डबल बेड में सोना है, कोई व्यक्ति पागलपन का कार्य करेगा कि पड़ोसी के घर में गया, फ्रिज खोला, आराम से ठंडा पानी पिया और उसके डबल बेड में जाके सो गया? नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है ये मेरा घर नहीं है। ये सारी की सारी संपत्ति भगवान की है, ईशावास्य इदम सर्वम। और हम अगर भगवान की संपत्ति को अपने भोग के लिए प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब हम भूल गए हैं कि भगवान की है, कि भगवान एक एक कण में है। यह भूलेंगे तभी हम भोग कर पाएंगे, तो भोग कैसे कर सकते हैं? लेकिन कोई पूछेगा, अगर हम भगवान को भूलकर भोग कर सकते हैं, इसका मतलब हम भगवान से आज शक्तिशाली हो गए? इसलिए बहिरंगा शक्ति में जब जब हम भोगने का प्रयास करेंगे तब तब हमें कुंठा प्राप्त होगी, फ्रस्ट्रेशन प्राप्त होगी। भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि की रचना इस ढंग से की है कि देयर इज अ फ्रस्ट्रेशन एट एवरी स्टेप। भगवान ने भौतिक जगत की रचना इस ढंग से की है कि कदम कदम पे हमारे झूठे अहंकार पर ठेस पहुंचती है, हमारे झूठे अहंकार पर आक्रमण होता है, पदम पदम यत विपदम। तो वास्तव में होता ही नहीं होता है ना, सारे के सारी हमारी योजनाएं फेल। हम सोचते हमें सफलता क्यों नहीं मिली, हमें यश क्यों नहीं मिला, हमें मान क्यों नहीं मिला, हमारी बात क्यों नहीं मानी गई। कदम कदम पे हमारे अहंकार पे ठेस पहुंचाई जाती है। ये सृष्टि की रचना भगवान ने इसीलिए की है। ये सृष्टि की रचना हम सबके पागलपन को ठीक करने के लिए की है। हम सब भगवान की नकल मानना चाहते थे, इसलिए भगवान ने सृष्टि की रचना की, और हमारे अहंकार में बार बार आक्रमण करके हमारे ईगो को ट्रिम करने के लिए, फॉल्स ईगो हटाने के लिए भगवान ने इस सृष्टि की रचना की है। लेकिन अध्यात्म जगत में हमारे जो असली अहंकार है वो बढ़ता है, हमारे आनंदम बुद्धि वर्धनम, प्रत्येक कदम पे हमें आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर कोई ये समझ जाए कि भगवान एक एक कण में है और भगवान की सेवा में हर वस्तु को लगाता है, तो प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर क्या बोलते हैं, विश्वम पूर्णम सुखाय, ये पूरा विश्व सुखमय बन जाता है। तो वास्तव में आध्यात्मिक और भौतिक में अंदर कोई अंतर नहीं है, अंतर हमारी चेतना का है। अगर हम देखेंगे तो वास्तव में हर वस्तु आध्यात्मिक है। अगर हम इस ज्ञान को सही ढंग से नहीं समझ पाते हैं तो फिर क्या होगा, और अगर सही ढंग से समझते हैं तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? देखिए, मैं स्वयं जो आत्मा है वो कौन है? वो भी भगवान की एक शक्ति है। और अगर मैं स्वयं भगवान की एक शक्ति हूं तो मेरे पास जो भी सब कुछ है, जो मेरा है, वो किसकी शक्ति हो गई? तो मेरे पास बचा कुछ? कुछ नहीं बचा। मैं भी भगवान का और जो कुछ मेरा है वो किसका होगा? भगवान का। तो क्या करना चाहिए? जो कुछ भी मेरा है उसको क्या करना है? भगवान की सेवा करना है। हमारे पास क्या क्या है, मेरा क्या क्या है, क्या क्या है मेरा? डरने क्या बात है, मेरा से कुछ भी नहीं। आप बोला को कैसे निकलता है फिलोसफी तो मेरा कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी जिसको हम बोलते हैं मेरा, वो क्या है? शरीर मेरा, और धन और विद्या, सब कुछ किसका है? भगवान का। ये सोच के डरना नहीं है। अगर कोई ऐसा प्रैक्टिस करेगा वो हमेशा आनंद में रहेगा, और यही भक्ति है ना। हम आपको कुछ दिखाते हैं, साइंटिफिकली कुछ एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। हमारे जब भक्ति शास्त्री कोर्स किया था तो इस भक्ति भागवत स्वामी महाराज ने नेक्टर ऑफ इंसेप्शन में समझाया था कि जीव क्या करता है, या तो भोग करता है या त्याग करता है। हर चीज को अपने लिए भोग करेगा, भोग 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 करेगा, दुखी हो जाएगा, त्याग त्याग त्याग, सब बेकार है, सब बेकार है। भोग और त्याग के बीच में पेंडुलम की तरह घूमता रहता है, भोग त्याग भोग त्याग भोग त्याग भोग त्याग। भोग क्या है? सेंस गैटिफिकेशन, एक्टिव सेंस गैटिफिकेशन। त्याग क्या है? रिनंसिएशन, ड्राइव। हमने ना भोग करना है ना त्याग करना है, हमने क्या करना है? एक्टिव रिनंसिएशन करना है। समझ गए? दूर बैठे नहीं समझे? भोग का मतलब क्या है? लिखा है हमने सेंस गैटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति, एक्टिव, बहुत सक्रिय होकर आप कर रहे हैं। और त्याग का मतलब है कि आप त्याग करेंगे, शुष्क त्याग, लेकिन आपने क्या करना है? सक्रिय त्याग। रिनंसिएशन क्या है? कि हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना, यह कहलाता है युक्त वैराग्य, यह कहलाती है भागवत धर्म। लेकिन यह होना चाहिए सुपीरियर गाइडेंस में, मार्गदर्शन में। जो कुछ भी हमारा है उसको हमने भगवान की सेवा में लगाना है, गुरु के मार्गदर्शन में। एक बार श्रील प्रभुपाद जी मायापुर में थे, और मायापुर में लोटस बिल्डिंग की छत पे वो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तभी वहां पर जपदा का स्वामी महाराज आए, और अपने साथ कैलकटा से एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आया साथ में। प्रभुपाद से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, प्रभुपाद बड़े खुश हुए और इंग्लिश में बोले, वेलकम, आई एम वेरी प्लीज टू सी यू, मैं बहुत खुश हुआ आपको देखकर, मायापुर में आपका स्वागत है, और आप क्या करते हैं? तो वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट था, वो एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, सफेद धोती कुर्ता और एक जैकेट डाली हुई थी, बड़े जोर से बोला, आई हैव ए ग्लास फैक्ट्री, मेरे ग्लास की फैक्ट्री है, शीशे की फैक्ट्री है। प्रभुपाद पूछा, ग्लास कहां से बनता है? बोला, सिलिकॉन से, रेत से। प्रभुपाद, रेत कहां से आती है? तो वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट था, थोड़ा बहुत पुण्य जीवात्मा था, समझ गया, बुद्धिमान भी था, बोला, भगवान से। फिर प्रभुपाद बोले, इसका मतलब तुम भगवान के सम्मान की चोरी करते हो। तो सबके सब हंसने लगे, वो बेचारा भी हंसा, लेकिन उसको बहुत गलत महसूस हो रहा, थोड़ा पीछे हो गया, बाकी शीशे प्रभुपाद से प्रश्न पूछने लगे, लेकिन उसको बहुत गारंटी महसूस हो रहा था। बाद में थोड़ा आगे आता है, फिर से बोला, स्वामी जी, मैंने भगवान से सम्मान तो लेता हूं, लेकिन मैं दान भी देता हूं। बोला, दान देते हो? प्रभुपाद कहते, देन यू आर ए लिटिल थीफ, दाव छोटे चोर। तो प्रभुपाद ने बताया कि अगर हम सब कुछ भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हैं तो हम चोरी कर रहे हैं। और गीता के तात्पर्य पर बताते हैं तीसरे अध्याय में, चोर व्यक्ति कैसे सुखी रह सकता है? चोर व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। तो इसलिए जो कुछ भी हमारे पास है, कैसी भी योग्यता है, कोई प्रचारक है बहुत अच्छा प्रचार करता है, बहुत अच्छा बोल सकता है, बहुत अच्छा गा सकता है, भगवान की सेवा में लगा दे। लेकिन कभी ये मत सोचे कि ये योग्यता मेरी है, बहुत चोरी हो जाएगी, है ना। क्रिकेट आप देखते थे या देखते हैं, है ना, फास्ट बॉलर आता है, वो बॉल करता है ना, इन स्विंगर मारी, आउट स्विंगर मारी, जो भी किया उसने बैट्समैन को बोल्ड कर दिया। तो उसमें हम क्या लिखते हैं? बैट्समैन का स्कोर बोर्ड लिखते हैं बोल्ड बाय, क्या लिखते हैं? लेदर बॉल। क्या लिखते हैं? बोल्ड बाय, बॉलर का नाम लिखते हैं। शक्ति को नहीं, शक्तिमान को देखा जाता है। ये नहीं बोलते यार बॉल बहुत अच्छी थी, नहीं, बॉल किसने फेंकी उस बॉलर की तारीफ की जाती है। और बॉलर इस मान लगेगा कि जोर से दौड़ के आया, क्या घुमाया मैंने बॉल को, नहीं, उसके अंदर दौड़ने की योग्यता, ये इंटेलिजेंस कैसे बॉल को घुमाना, ये किसने ली? कृष्ण ने। तो इसी ढंग से कुछ भी हमारे पास है उसको हमें भगवान की सेवा में लगाना है, और कुछ भी योग्यता है उसका हमें अभिमान नहीं होना चाहिए कि मेरे पास है, ये किसने दिया हमें? भगवान ने दिया है, भगवान की सेवा में उपयोग करने के लिए। और समझ लीजिए, अगर सब कुछ बस हर कर्म कर्म में भगवान है तो हमें क्या करना चाहिए? हर जड़ और चेतन वस्तु की हमें सम्मान करना चाहिए, उसको आदर देना चाहिए, है ना। हम जब किसी पथ पर जाते हैं, हमारा पांव लगे तो हम क्या करते हैं? उसे क्षमा मांगते हैं, उसे छूते हैं। इसी तरह से किसी जड़ वस्तु को भी हमें प्यार से नहीं छूना चाहिए, है ना। हमें याद है कि बचपन में हम कभी गलती से बिजली के स्विच को पैर से ऑफ या ऑन करते थे तो डांट पड़ती थी, नहीं, पैर नहीं लगाना, हाथ से करना है, है ना। तो ये रिस्पेक्ट देनी है। आजकल के जमाने में मॉडर्न टेक्नोलॉजी से यूज एंड थ्रो हो गया है, जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो, तो हम उसकी कदर नहीं करते। लेकिन वैदिक संस्कृति में हर वस्तु को संभाल के रखा जाता था। पुरानी से पुरानी वस्तु की भी कुछ आदर होती थी, कीमत होती थी ना। आपने भी देखा होगा पुराने लोगों ने, पुराने कपड़े भी हो जाते तो उसको एक्सचेंज करके बर्तन ले लेते थे। हर वस्तु का सम्मान होता था, यूज एंड थ्रो का मानसिकता नहीं थी। ये अपने आप, ये फिलॉसफी कैसे हमारे जीवन में सूक्ष्म रूप से आती है, देख सकते हैं। हर वस्तु में भगवान है, हर वस्तु का हमें आदर करना चाहिए। श्री प्रभुपाद क्या कहते हैं, केवल मंदिर को ही साफ नहीं रखना। प्रभुपाद कहते मायापुर में टॉयलेट टंडा मारा उन्होंने, देखा अंदर गंदगी थी। प्रभुपाद ने क्या बोला, शिव विग्रह राधा नित्यनाथ श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो। ये टॉयलेट है, ये भी मंदिर का एक हिस्सा है, ये भी साफ होना चाहिए। तो हर वस्तु का हमें सम्मान करना चाहिए। हम देखते हैं कृष्ण परम नियंता है, लेकिन कृष्ण अपनी इच्छा को दूसरों पर थोपते नहीं है। अगर हिरण्यकश्यप भी परम नियंता बनने का प्रयास कर रहा था, तो हिरण्यकश्यप ने सबको एकदम पीड़ित कर दिया। लेकिन भगवान परम नियंता है, लेकिन इस परम नियंता की अभी शक्ति को वो अपने भक्तों की सेवा के लिए करते हैं। भगवान परम नियंता है, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान प्रत्येक जीव का शोषण करते हैं। भगवान प्रत्येक जीव की सेवा में अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। लेकिन हम लोग देखें, अगर हमें थोड़ा सा शक्ति मिल जाए, थोड़ी सी पावर मिल जाए, तो हम करप्ट हो जाते हैं। कहा जाता है ना, द पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। और हमारे पास में कुछ चलता भी नहीं है, हम केवल नाम के ही अध्यक्ष हैं, हमारी अध्यक्षता में कुछ नहीं होता। भगवान कहते हैं मैं अध्यक्ष पकड़ती सुइते सचराचरम। हमारी अध्यक्षता में क्या है, आप कभी एसी के लिए रिमोट आ गया हाथ में, दबाएंगे एसी चलेगा नहीं। बोले क्या, बोले यहाँ नाला है, यहां से गैस निकलती, सारा गैस लीक हो गया, कॉपर ट्यूब खराब हो गई। जो जड़ वस्तु है वो भी हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो जीवित वस्तु कैसे नियंत्रण में होगी। एक युवक और युवती मिलते हैं आपस में विवाह से पहले, बड़ा स्वीट स्वीट टॉकिंग होता है, बड़े अच्छे लगते हैं। ऐसा स्त्री ऐसे पुरुष कभी मिले ही नहीं हमें, है ना, ड्रीम लैंड, ड्रीम मैन, ड्रीम गर्ल। और जब धीरे धीरे इकट्ठे रहना शुरू करते हैं, फिर उनको साक्षात्कार होता है, यार इसके अंदर भी ईगो है, इसके अंदर भी अहंकार है, बड़ी ठेस पहुंचती है। क्योंकि जब नए पुरुष और स्त्री मिलते हैं, पुरुष सोचता है मैं शक्तिमान, ये मेरी शक्ति, और अंदर में स्त्री सोच होती मैं शक्तिमान, ये मेरी शक्ति, मैं इसको रिमोट से चलाऊंगी, वो सोचते हैं मैं इसको रिमोट से चलाऊंगा। बाद में जब इकट्ठे मिलते हैं, बातचीत होता है, तो पुरुष कहता है काश ऐसा रिमोट आ जाए कि मैं उसको म्यूट कर दूं। और इसी सोची काश मेरे पास ऐसा रिमोट है, जैसे नचाऊं ये नाचे। लेकिन ना तो सोनी है ना शार्प, नहीं ऐसा कोई म्यूट, ऐसा रिमोट कंट्रोल नहीं आया कि उसको म्यूट कर दे। तब ठेस पहुंचती है कि इसके अंदर भी ईगो है, मेरी बात क्यों नहीं मानते। क्योंकि दोनों एक दूसरे को नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, एक दूसरे की सेवा करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। पुरुष के पास कोई शक्ति है, स्त्री के पास भी कोई शक्ति है, उस शक्ति का उपयोग कर रहे हैं एक दूसरे को नियंत्रित करने का, इसलिए दोनों ही दुखी हैं। उसके बाद संतान की उत्पत्ति होती है। संतान, मेरी संतान, मैंने क्रिएट किया तो मेरा कहना मानेगी। जब तक छोटा है कहना मानता, नहीं भी मानता तो बड़ा क्यूट लगता है ना। लेकिन बड़ा होकर जब कहना नहीं मानता, हो मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा, अब सोचो माता पिता कितने दुखी होते। इसको समझाओ प्रभु जी, समझाओ, कहना नहीं मानता बार, क्यों मैंने आपको कहना बताइए, क्यों माने। मैंने इसको अपने पेट में 9 महीने रखा। अच्छा, आपने अपने पेट में 9 महीने रखा, महाविष्णु ने हमें अपने पेट में करोड़ों साल रखा था, करोड़ों करोड़ों साल तक हम महाविष्णु के पेट में रहते हैं और बाहर निकल के फिर विद्रोह कर देते हैं। तो ये तो खाली आपने 9 महीने रखा, फिर क्यों माने। ये नहीं माना कि कह रहा कि सब बच्चों कहना नहीं मानना, लेकिन क्योंकि हम नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, हमारे अध्यक्षता में कुछ नहीं चलता, ये मानना पड़ेगा। तो बात करते हैं रियल इंटेलिजेंस क्या है। असली बुद्धि ये है कि ये समझना कि भगवान ही सब कुछ है और मैं कुछ नहीं हूं। लेकिन आज की आधुनिक शिक्षा ने हमें क्या समझाया है, मैं ही सब कुछ हूं, भगवान कुछ नहीं। हमें समझाना पड़ता है, डज गॉड रियली एग्जिस्ट, सेमिनार देने पड़ते हैं इसके ऊपर कि भगवान है कि नहीं। ये आधुनिक शिक्षा का प्रभाव है, जबकि असली वैदिक शिक्षा ये है कृष्णा इज एवरीथिंग एंड आई एम नथिंग। कितना उल्टा हम घूम गए हैं, है ना, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी हमें, सारे अंदर जिंदगी हमारी गई हुई है। तो कंट्रोल करने का प्रयास जब तक करते रहेंगे हम दुखी रहेंगे। हमें याद रखना चाहिए कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर। और हमें आदत पड़ गई, सब लोग देखा हमें प्रणाम कर रहे हैं, सब लोग देखा हरे कृष्णा बोल रहे हैं, एक भक्त ने नहीं किया, कैसा महसूस होता है। हिरण्यकश्यप की अगर पूरी दुनिया झुकती थी, देवता पे झाड़ू लगाते थे, पहला महाराज कहना नहीं मानता था, कितना हिरण्यकश्यप का सारा की सारी तपस्या बेकार। हमारे साथ में ये होता है कि मुझे मान क्यों नहीं मिला, मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, मैं इंचार्ज हूं, मैं इसका लीडर हूं, मेरी बात माननी चाहिए थी, मैं सीनियर हूं, मेरी बात माननी चाहिए। ये दक्षा की मानसिकता है। दक्ष को शिव जी ने प्रणाम नहीं किया, उसने सारा उसका सारा यज्ञ ध्वस्त हो गया। हमारा ही पूरा जब यज्ञ ध्वस्त हो जाता है अगर हम इसमें चिंतित रहते हैं, उस भक्त ने मैं प्रणाम नहीं किया, उस भक्त ने ऐसा क्यों बोला। तैनाम महाराज बिल्कुल भी विचलित नहीं थे, हिरण्यकश्यप उनको इतना प्रताड़ित कर रहा था, लेकिन तैनाम महाराज समझ रहे थे कि अगर हिरण्यकश्यप मुझे प्रताड़ित कर रहा है, इसके पीछे भगवान की इच्छा है। अगर हम ये देखने का प्रयास करेंगे, हर परिस्थिति को, हर अवस्था में भगवान के हाथ को देखने का प्रयास करेंगे कि भगवान परम नियंता है, बिना उनकी आज्ञा के कुछ नहीं हो सकता, तो हमारा जीवन बहुत शांत हो जाएगा। और जब तक हमें संघर्ष करते रहेंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों क्यों, पहला मैंने एक बार भी नहीं भगवान से कंप्लेंट की, अब आ गए हो हैं, पहले क्यों नहीं आए, जब पहाड़ से नीचे फेंका था तब क्यों नहीं आए, हाथी के पैर से कुछ लाया तब क्यों नहीं आए, अग्नि में मेरे को जलाया क्यों नहीं आए, देर से आते हो हमेशा दिल्ली पुलिस की तरह। ऐसे नहीं बोला, हमेशा उन्होंने उनका सम्मान किया, एक बार भी कंप्लेंट नहीं की, और ना ही उन्होंने हिरण्यकश्यप को दोष दिया कि तुमने ऐसा मेरे साथ किया, नहीं। तो ये बात समझने की है, हो सकता है हमें व्यवहारिक ना लग रही हो ये बात, लेकिन ये प्रैक्टिस करने की बात है। जब तक, क्योंकि ये संबंध ज्ञान क्लियर नहीं है, इसलिए हम दूसरों को आरोप देते हैं, इसलिए हम दूसरों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, इसलिए हम सारा यश अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि हम सोचते मैं ही सब कारणों का कारण हूं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ भगवान में छोड़ दिया, कर्मणि अधिकार से मां फलेशु कदाचना, मां कर्म फल हेतु मां तो संगस्तो कर्मणि। हम केवल अपनी ड्यूटी करें और जो रिजल्ट है, जो परिस्थितियां हैं, वो भगवान के नियंत्रण में है, हमारा जीवन बहुत सुखी हो जाएगा, हम जीवन के लक्ष्य पे केंद्रित रह पाएंगे। हमें से हर कोई भक्ति करना चाहता है, लेकिन इस भौतिक जगत की परिस्थितियां, अवस्थाएं, सरकमस्टांसेस हमें भ्रमित कर देते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, द्वंद में फंस जाते हैं, सुख दुख यश अपयश लाभ हानि सफलता विफलता, उस चक्कर में हम अपने लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं। अगर संबंध ज्ञान स्पष्ट होगा तो हम फोकस रहेंगे और अच्छे ढंग से भक्ति कर पाएंगे। तो प्रश्न हो सकता है कि कैसे फोकस रहे, कैसे याद रखें हमेशा कि भगवान परम नियंता है। तो भागवत के ज्ञान स्कंद में बताया गया है, ये बहुत लंबी डिस्कशन है, संक्षेप में बता रहे हैं कि ये कैसे समझे कि भगवान ने अपना विस्तार कण कण में कर लिया। तो जी गोस्वामी जी बताते हैं, हम तो भौतिक वस्तुओं को भी नहीं समझ सकते, कैसे समझ सकते हैं कि एक मंत्र में इतनी शक्ति है, किसी को सांप डस गया, मंत्र बोला, उसका जहर गायब हो गया, कोई समझ सकता है? लॉजिक से नहीं समझ सकता, प्रभाव देखकर समझ सकते हैं, मंत्र का प्रभाव है। कैसे समझ सकते हैं कि एक बीज के अंदर इतना बड़ा पेड़ है, प्रभाव देखकर कि बीज से पेड़ निकल रहा है। उसी ढंग से कैसे समझे कि हम कि भगवान ने परम सत्य में ज्ञान सब जगह विस्तार कर लिया है। विष्णु पुराण में पराशर बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन के साथ, मैच्योर ऑब्जर्वेशन के साथ, परिपक्व ऑब्जर्वेशन के साथ समझ सकते हैं। तो परिपक्व ऑब्जर्वेशन कैसे आएगी, वो बताते हैं, शास्त्रों को बहुत ही विनम्रता पूर्वक सुनना, सबमिसिव हियरिंग। जब हम बहुत ही ध्यान पूर्वक और विनम्रता पूर्वक सुनते हैं और भक्ति के नियमों का पालन, सर्विस एटीट्यूड डेवलप करते हैं, तब हम समझ पाएंगे कि प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा के लिए है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं अपने इसी श्लोक के लेक्चर में, क्योंकि भगवान कण कण में है, इसलिए हमें जगह जगह जाके भगवान का हमें गुणगान करना चाहिए। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, क्योंकि हर जगह भगवान उपस्थित है। तो अगर हम भगवान चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में भाग लेंगे, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, और सेवा की भावना विकसित करेंगे और साथ साथ में ध्यान पूर्वक और विनम्रता पूर्वक सुनेंगे, तो हम ये ऑब्जर्व कर पाएंगे वास्तव में भगवान अपना विस्तार एक कण कण में करते हैं,
और फिर हम प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाएंगे, और जब हम प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो ये भौतिक जगत भौतिक न रह के वैकुंठ बन जाएगा, है ना। हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी सुख और चैन रहेगा और हम सबको असली आनंद देने का माध्यम बन पाएंगे। हरे कृष्ण।
जीव को नियंत्रण तो होना ही पड़ता है, चाहे वो तीन गुणों के अंदर हो चाहे वो आध्यात्मिक शक्ति के अंदर हो, लेकिन जब जीव शर्त लेता है कृष्ण की, तब तो कृष्ण या गुरु उसके ऊपर नियंत्रण करते हैं या तब भी नहीं करते हैं? या
निश्चित रूप से वास्तव में कृष्ण ही नियंत्रित कर रहे हैं गुरु परंपरा के माध्यम से। हमारे हमें नियंत्रित तो रहना ही है, या तो हम कृष्ण के अंदर नियंत्रित रहेंगे या फिर माया देवी के अंदर। तो प्रश्न क्या है?
प्रश्न ये था कि मतलब कृष्ण नियंत्रित करते हैं, गुरु नियंत्रित करते हैं, लेकिन अगर जब एक व्यक्ति शरण लेता है भगवान की तब तो करते हैं ना, तब तो अगर वो ना क्रिया गुरु है वो ना करें फिर तो एक
आप मतलब गुरु फिर नियंता बन जाते हैं।
जब एक व्यक्ति शरण लेता
है, गुरु अपने आप को अभी भी नियंता नहीं मानता, गुरु हमेशा अपने आप को सेवक ही मानता है। एक बार प्रभुपाद थे तो एक व्यक्ति ने पूछा, आर यू द गुरु ऑफ एलन गिन्सबर्ग? सारे एलन गिन्सबर्ग बहुत फेमस हिप्पी था सैन फ्रांसिस्को में, ये बड़ा लोडेड क्वेश्चन था। ये क्या प्रभुपाद हाँ बोलते हैं मैं एलन गिन्सबर्ग का गुरु हूँ तो बदनाम होते हैं, कैसे हिप्पी का गुरु है? और अब बोलते नहीं हूँ तो फिर हिप्पी लोग नाराज होते। तो प्रभुपाद बोला, आई एम नो वन्स गुरु, आई एम एवरीवन्स सर्वेंट, है ना। तो गुरु की सेवा अगर किसी को प्राप्त होती है ये एक सेवा है। गुरु अपने डिसाइपल्स को कंट्रोल नहीं करता, नियंत्रित नहीं करता, वो केवल उनकी सेवा करता है कैसे वो अध्यात्म जगत में आगे बढ़े। इट्स नॉट कंट्रोलरशिप, एक सेवा है। इट्स नॉट नियंत्रण, उनका मार्गदर्शन है, उनको डांटेंगे भी सब कुछ भी करेंगे कंट्रोलरशिप की मेंटेलिटी से नहीं, सर्विस एटीट्यूड से। हाँ, इट्स नॉट कंट्रोलिंग, कभी भी ये नहीं सोचेगा मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूं। शिष्य मानेगा कि आप मुझे कंट्रोल कीजिए, शासन कीजिए, लेकिन गुरु ये नहीं सोचता कि मैं अपने शिष्य के ऊपर शासन करूंगा, गुरु तो उसकी सेवा ही कर रहा है।
हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वेरी फिलोसॉफिकल एंड प्रैक्टिकल लेक्चर। एक प्रश्न था, एक साधक भक्त के जीवन में जैसे ये कर्म मिश्रित और ज्ञान मिश्रित भक्ति आपने बताया, तो नेचुरली उत्तम उत्तम भक्ति तो नहीं है और नेचुरली इसमें उत्तम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला, यह आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन क्या कर्म मिश्रित और ज्ञान मिश्रित भक्ति इन जनरल साधक भक्त के लिए अरंड स्टेपिंग स्टोन, कि जैसे जैसे वो प्रयास करते रहेंगे इस भक्ति के पथ पर तो ये कर्म और ज्ञान के जो आवरण है धीरे धीरे जो है कम होते जाएंगे? अंडरस्टैंडिंग ओके। और
यह बड़ा अच्छा प्रश्न है कि ये कर्म और ज्ञान का जो मिश्रण कैसे दूर होगा। तो हम सुनते हैं नाम अपराध का दसवां अपराध, हरि नाम की अकार महिमा सुनने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, ये कर्म और ज्ञान का मिश्रण दोनों एंजॉयमेंट मेंटेलिटी है। अगर इसको हम बनाए रखेंगे तो फिर हम प्रोग्रेस नहीं करेंगे, हमें सारा प्रयास करना पड़ेगा इससे मुक्त होने का, है ना। भक्ति भी कर रहे हैं लेकिन भक्ति सेवा कर रहे हैं भोक्ति के लिए, इसीलिए सेवा कर रहे हैं कि इसमें एंजॉयमेंट मेरे को मिल रहा है, तो फिर हम शुद्ध नहीं हो पाएंगे, बहुत जन्म लगेंगे, बहुत जन्म तो उत्तम भक्ति नहीं हो पाएगी। स्टार्टिंग तो यही से होगी, गणेश अधिकारी स्टार्टिंग तो यही से करेगा, लेकिन उसको मालूम होना चाहिए कि ये मेरी भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है, इससे ना हो।
हरे कृष्ण भाई जी, इसी से क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया दृष्टित भक्त में या स्टार्टिंग में भक्त से कर्म और ज्ञान का मिश्रण होता है, तो कर्म का मिश्रण तो समझ में आता है कि भोग की इच्छाएं होती है, ये ज्ञान के ये जो मिश्रण होता है इसको कैसे पहचाने और आइडेंटिफाई करें?
ज्ञान के मिश्रण में जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, त्याग देते हैं, है ना, शुष्क वैराग्य दिखाते हैं, ऐसी ऑस्टेरिटीज करेंगे शुष्क वैराग्य की, या ये सेवा मैं नहीं करूंगा, या हम उस परिस्थितियों को नकार देते हैं, नकारात्मक होना, और भोग के लिए हम वस्तु सब कुछ भोग के लिए करते हैं, तो ये ज्ञान का मिश्रण है। या फिर ज्ञान का मिश्रण ये भी है कि भक्ति कर रहे हैं अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए या अपने ज्ञान के प्रदर्शन के लिए, ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए, तो ये ज्ञान का मिश्रण है। ठीक है, सबसे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।
जगत गुरु श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की।